SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी समर्थन मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। श्री धनखड़ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई मुद्दों पर टकराव के कारण लगातार सुर्खियों में रहते आए हैं। राजस्थान के जाट समुदाय से संबंध रखने वाले श्री धनखड़ की उम्मीदवारी को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के नाराज किसानों को मनाने की कोशिश और आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्री धनखड़ को चुने जाने की अपील करते हुए उन्हें किसान पुत्र की संज्ञा दी।
मेरा आग्रह है सभी भारत के राजनीतिक दलों से कि आप सबका उपराष्ट्रपति पद के लिए हमारे जगदीप धनखड़ जी का समर्थन मिले। अभी समय भी है, अभी मौका भी है, तो हम सभी से अपील करते हैं और विशेष करके मैं यूपीए के घटक दलों से निवेदन करना चाहूंगा कि आइए, ये मौका है जब हम एक किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कर सकेंगे।
भाजपा की घोषणा के अगले ही दिन रविवार को विपक्ष ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बेहतर उम्मीदवार बताया।
अच्छी कैंडिडेट है, महिला है, माइनॉरिटी कैंडिडेट है, जिसको राज्यसभा में एक्सपीरियंस है और केंद्र में मिनिस्टर थी और गवर्नर भी थी, तो इतने सब क्वालिफिकेशन उसके पास है और मैं समझता हूँ इतना क्वालिफिकेशन वाला कोई उपाध्यक्ष दूसरे फील्ड उपराष्ट्रपति में कोई भी नहीं है।
इस बीच कई राजनीतिक दलों से समर्थन न मिल पाने के बावजूद विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर से सांसदों और विधायकों से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लोकतंत्र को बचाने की अपील की है।
मैं जोर देके कहना चाहता हूं कि आज देश के भविष्य की लड़ाई हमारे सामने है, आज संविधान की रक्षा की लड़ाई हमारे सामने है। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना मत मेरे पक्ष में दें और आपसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की पूरी तरह से रक्षा करूंगा।
आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के हंगामा खेज होने के आसार हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि वे महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना, किसानों के साथ वादा खिलाफी, चीनी घुसपैठ और सरकारी एजेंसियों द्वारा दमन चक्र चलाए जाने जैसे मुद्दों पर पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएंगे। विपक्ष ने 18 जुलाई से 12 अगस्त तक मात्र 18 दिन चलने वाले इस सत्र में मोदी सरकार द्वारा 32 बिलों को लाए जाने की तैयारी के ऊपर भी घोर आपत्ति जताई है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी दलों से हंगामा न करने और सार्थक मुद्दों पर बहस करने की अपील की।
हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं आप, डिबेट में पार्टिसिपेट करो, चर्चा करो, हमको क्रिटिसाइज करो, सो दैट हमको भी हमारा अगर कुछ उसमें कमियां है तो मिल जाएगा। वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग इफ दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। अगर हमको शोर शराबा करना, बाधा डालना, रकस क्रिएट करना यही वो चाहते हैं तो हम क्या करें।
लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि जब सरकार उन्हें मुद्दे उठाने ही नहीं देती और दमन करती है तो वे क्या करें। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मोदी सरकार के दमन के बावजूद विपक्ष अपनी आवाज बुलंद रखेगा।
इन द लास्ट सेशन, इन द मॉनसून सेशन, 27 बिल्स वर पास्ड, एवरेज टाइम ऑफ द बिल्स वाज जस्ट 9 मिनट्स। इन 7 इयर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नॉट आंसर्ड वन क्वेश्चन इन राज्यसभा, जीरो। Parliamentary scrutiny, bills are being scrutinized. Earlier was 7 out of 10 bills, now it is 1 out of 10 bills. This is the real issues is to show. I want the young people of India to know what is happening. And now with these words, it's a very, very serious situation. The opposition will not take it lying down. Trinamool Congress will not take it lying down. We will hit back hard because we have to save democracy.
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक शब्दों में कहा कि विपक्ष सारे जरूरी मुद्दे उठाएगा। विपक्ष की दलील को पुख्ता करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि पहले विपक्ष के नेता विशेष रूप से एक उत्कृष्ट भूमिका निभाते थे, सरकार और विपक्ष के बीच बहुत अधिक सम्मान हुआ करता था। दुर्भाग्य से आज विपक्ष का प्रभाव क्षेत्र कम हो रहा है। हम बिना विस्तृत विचार विमर्श और जांच पड़ताल के कानूनों को पारित होते देख रहे हैं। सुदूर उत्तरी भारत में स्थित पूर्वी लद्दाख सीमा के विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 16वें दौर की कोर कमांडर लेवल बैठक रविवार को संपन्न हुई। लगभग 12 घंटे चली इस बैठक में दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में विघटन और डी एस्केलेशन की रुकी हुई प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने भारत चीन सीमा गतिरोध में शामिल पीएलए के शीर्ष सैन्य कमांडरों से लंबी मुलाकात की, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव में इजाफा हुआ है। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने वायुसेना की ओर से हर चुनौती का सामना करने का आश्वासन दिया है।
See, ever since the Galwan incident in June 2020, we had started deploying our radars right from the northernmost point of the LAC all along the eastern Ladakh sector. So we are able to monitor the air activity across the LAC. Whenever we find that the Chinese aircraft or the RPAs are coming a little too close to the LAC, we take appropriate measures by scrambling our fighters.
CUET यानि केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर भारत के कई इलाकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दाखिले की इस नई पद्धति के अंतर्गत बहुत से छात्रों को सही परीक्षा केंद्र न मिल पाने, परीक्षा केंद्र के ऐन वक्त पर अचानक बदल दिए जाने से शनिवार को अफरा तफरी का माहौल रहा। कई छात्र छात्राओं ने एडमिशन कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्र पर जाकर पाया कि या तो वहाँ कोई परीक्षा केंद्र ही नहीं है या उनका परीक्षा केंद्र रातों रात काफ़ी दूर बदल दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष मामीडला जगदीश कुमार ने इस शिकायत पर एक स्पष्टीकरण जारी किया।
If a few students have missed the CUET because they turned up late at the centers beyond the 30 minutes grace time that we give, if they have turned up beyond this time, there is no way we can conduct a retest to them.
इस स्पष्टीकरण के बाद छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों में भारी रोष और हताशा व्याप्त है और कई लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की सोच रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं खेल जगत के समाचार। भारत की अव्वल नंबर की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का महिला एकल खिताब जीत लिया है। रविवार को हुए कांटे के मुकाबले में उन्होंने मौजूदा एशियाई चैंपियन चीन की वैंग जी को 21-9, 11-21 और 21-15 से हराया। 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद सिंधु का यह खिताब जीतना उनकी टॉप रैंकिंग में वापसी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर ली है। इस मैच के हीरो रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। पांड्या ने न केवल 7 ओवर में मात्र 24 रन देकर इंग्लैंड के 4 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन पहुंचाया, बल्कि 259 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 55 गेंदों में 71 रनों की बेशकीमती पारी भी खेली। ऋषभ पंत ने तो मानो रनों की बौछार ही लगा दी। उन्होंने नाबाद रहते हुए 113 गेंदों पर 125 रन बनाए और इंग्लैंड द्वारा दिए गए लक्ष्य को मात्र 42 ओवर 1 गेंद में ही हासिल कर लिया। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।